नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग के बाद लोकसभा का कार्यवाही जो दो बार स्थगित किया गया को फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरे स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य फिर से सदन के बीच में आ गए और एसआईआर के खिलाफ नारे लगाने लगे। बार बार अपील के बाद भी विपक्ष ने विरोध जारी रखा, इसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में जब पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दोहराया कि सरकार चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, जिसकी मांग विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर नियम 267 के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी और वॉकआउट किया। बाद में राज्यसभा ने मणिपुर वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर लौटा दिया। यह अक्टूबर में जारी मणिपुर वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। विधेयक पारित करने के बाद राज्यसभा ने विशेष उल्लेख पर विचार किया, जहां सदस्यों ने तत्काल महत्व के मुद्दे उठाए। कामकाज संपन्न होने के बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह विधेयक मणिपुर में व्यापार करना आसान बनाएगा और अनावश्यक विवादों से बचाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस संशोधन से एक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम स्थापित किया जाएगा।
ये विशेष संशोधन जीएसटी में हमारे द्वारा उठाए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार आधारित कदम है। एक बार जब हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करते हैं तो निजी सूचनाओं को सुरक्षित किया जाएगा। ये 2025 के वित्त अधिनियम में भी शामिल था और इसको अब हम मणिपुर के विधेयक में भी ला रहे हैं।
नाउ वी आर मेकिंग इट इनटू अ बिल फॉर मणिपुर।
लोकसभा में इस महीने की 8 तारीख को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। सदन में 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस होगी। आज संसद भवन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि लोकसभा ओम बिरला की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां ये फैसला लिया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 68,393.67 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में 4th काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के 1,400 से अधिक प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभागियों का पहला समूह कन्याकुमारी से आज सुबह काशी पहुंचा, जहां वे तमिल करकलम तमिल सीखें विषय पर आयोजन में शामिल हुआ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये आयोजन 15 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। रेलवे 4th काशी तमिल संगम के लिए कन्याकुमारी, चेन्नई, कोयम्बटूर और वाराणसी के बीच 7 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि ये रेलगाड़ियां कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। श्री सिंधिया ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा के दौरान दोनों देश कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। दिल्ली में एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में श्री पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 और लड़ाकू विमान SQ-57 राष्ट्रपति की यात्रा के मुख्य एजेंडे में शामिल होंगे। भारत आज तमिलनाडु के मदुरई में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के अपने अंतिम पूल मैच में स्विट्जरलैंड के साथ खेलेगा। यह मैच 8:15 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।